ऋषभदेव का जन्म अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे ईश्वर, संभव है कि हम लड़खड़ाने, भूख रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने कारण आपके नाम का स्मरण न कर पावें। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। तात्पर्य, जीवन की वास्तविक सफलता है अंते नारायण स्मृति ही, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण तथा रूप का स्मरण। भले ही हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विक्षेप के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने के योग्य रखें, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति नाजुक होगी। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें तथा 14वें और 15वें श्लोक देखने चाहिए। अनुवाद दोहराइएगा। हे ईश्वर, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज नाभि, जो कि महाराज अग्निध्र के पुत्र थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ संपन्न किया था, जिसमें उनका उद्देश्य था कि उन्हें एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। केवल अच्छा पुत्र ही नहीं, उन्हें एक योग्य पुत्र चाहिए था, क्योंकि केवल पुत्र होना या संतान होना इतना काफी नहीं है, व्यक्ति योग्य होना चाहिए। चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि हजारों तारों से एक चांद अच्छा है। मतलब किसी के 100 पुत्र हों लेकिन सब कौरवों जैसे, और किसी के 1 पुत्र हो लेकिन वो पांडव जैसे, तो वो अच्छा है। पांडव होना, एक अच्छा पुत्र होना, वो अच्छा है। उसी प्रकार से मंदिरों में कम भक्तों की संख्या होना अच्छा है, लेकिन वो भक्त अच्छे हो। ऐसे नहीं कि हजारों की संख्या में भक्त आए लेकिन आपस में झगड़े करें, वो सीरियस नहीं, गंभीर नहीं भक्ति के बारे में, सुनने में श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं, ऐसे भक्तों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो भक्ति मार्ग में गंभीर है, सिंसियर है, हृदय से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वैष्णव गुणों का अनुशीलन करना चाहते हैं, जो नम्र हैं, जो आपस में सहकार्य से कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद भक्ति मार्ग में करते हैं, अहंकार को बीच में आने नहीं देते, ऐसे कम भक्त हो कोई बात नहीं। तो महाराज नाभि भी ऐसा पुत्र चाहते थे जो इतना योग्य हो। तो महाराज नाभि सोच रहे थे इतना योग्य पुत्र कौन हो सकता है, तो उन्होंने यज्ञ किया था इसलिए कि उनको भगवान की तरह एक पुत्र चाहिए था, साधारण कोई पुत्र नहीं, इस संसार का कोई योग्य व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान की तरह वो योग्य होना चाहिए, ऐसा पुत्र उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये विशाल यज्ञ किया था। लेकिन फिर भी ये एक भौतिक चीज है, भगवान के पास भौतिक चीज के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें पुत्र चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें व्यवसाय में प्रगति चाहिए, इन चीजों के लिए हमें भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाना है तो केवल उनके शुद्ध भक्ति के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सफलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे जीवन की सफलता की परीक्षा उस समय की जाती है जब हम शरीर को त्यागेंगे, जब हमारा प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, मृत्यु का समय। जब मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान के धाम में लौट कर चले जाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मतलब ये शरीर, मुक्त्वा मतलब त्याग करते समय, मुक्त्वा कलेवरम जब हम शरीर त्याग करते हैं उस समय स्मरण माम एव, अगर हम भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे अंत काल में तो क्या होगा, हम निश्चित असंशय बिना कोई संशय के भगवान के पास जाएंगे। तो ये हमारी अंतिम गति है। और अगर हमने भगवान का स्मरण नहीं किया तो हम किसी और चीज का स्मरण करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का स्मरण करेंगे, किसी दूसरे स्थान का स्मरण करेंगे, और जैसे हमारी चेतना होगी मृत्यु के समय उस हिसाब से हमें अगली गति मिलेगी। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, कि जो भी हमारी भावना होगी मृत्यु के समय, जिस चीज का स्मरण हम कर रहे होंगे उस समय, उसी गति की प्राप्ति हमें होगी अगले जन्म में मृत्यु के बाद। तो ये हमारे जीवन की परीक्षा है मृत्यु, और मृत्यु के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में ही हम इस तरह की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि चेतना हमारी उस हद तक विकसित रहती है, लेकिन पशु प्राणी इत्यादि में ये संधि उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं रहती है। तो जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, हमने कितना नाम कमाया है समाज में, कितने बड़े गाड़ी बंगले हमारे पास हैं, कितना संसार का भोग हमने किया है, ये हमारे सफलता का नापतोल नहीं है। सच्ची सफलता क्या है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। श्रीमद् भागवत के छठ स्कंध में बताया जाता है, एतावान सांख्य, अगर कोई व्यक्ति सांख्य योग का पालन कर रहा है, मतलब जिससे कि वो सारे सृष्टि के भीतर अलग अलग तरह से विश्लेषण करके जानना चाहता है कि सृष्टि के पीछे क्या है, कौन है, तत्व क्या है, इसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य संख्य मतलब गणना विश्लेषण, उससे आता है सांख्य, सांख्य पद्धति। सांख्य योग से इस ब्रह्मांड का विश्लेषण करने के बाद इसके पीछे क्या है, इस निष्कर्ष को पहुंचना। एतावान सांख्य योगाभ्याम अष्टांग योग, योगाभ्याम मतलब अष्टांग योग की पद्धति का पालन करना, जैसे कि यम नियम प्राणायाम आसन धारणा प्रत्याहार इत्यादि, अंत में समाधि। ये अष्टांग योग की पद्धति ये भी बहुत कठिन है। अलग अलग तरह के नियमों का पालन करके योगी प्रयास करता है कि अपने हृदय में स्थित भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, तीसरी बात है स्वधर्म का पालन करना बहुत अच्छे ढंग से। जैसे स्वधर्म के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो जो वर्ण में जो आश्रम में है हम उन कर्तव्यों का पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम जो भी वर्ण में हैं और जो भी आश्रम में हैं, उस हिसाब से हमें अलग अलग कर्तव्य निभाने पड़ते हैं जो कि शास्त्रों में दिए हुए हैं। अगर हमने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो फिर हम पशु कहलाते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन में वर्णाश्रम धर्म हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे ढंग से सांख्य योग का पालन किया, अष्टांग योग का पालन किया, अपने स्वधर्म का आचरण किया, पालन किया, लेकिन अगर उसने अंत में भगवान का स्मरण नहीं किया हो तो उसका जीवन असफल है। और अगर ये सारे कार्य करने से अंत में उसने नारायण का स्मरण किया हो तो उसका जीवन सफल। जन्म लाभ परह पुंसाम, उसका जन्म का जो लाभ है, उसकी जन्म की परिपूर्णता है, उसकी सफलता है, वो क्या है? अंते नारायण स्मृति ही। जिस तरह से एक विद्यार्थी की सफलता कब पता चल सकता है? परीक्षा के समय, साल के अंत में जब परीक्षा होती है तब हम ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना समझा है, साल भर की पढ़ाई उसके दिमाग में कितनी गई है, किस हद तक उसने अच्छी तरह से सीखा है, पढ़ाई किया है। तो ठीक उसी तरह से मृत्यु ये हमारे लिए एक परीक्षा है, और इस मृत्यु में हमें श्री हरि का, श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए अंत में। तो हमारा सारा जीवन जो है इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो खास करके समय बताया गया है, मृत्यु का समय, जिस समय की सबसे जरूरी है हमें भगवान का स्मरण करना, वो समय प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार सबसे कठिन क्षण होता है भगवान का स्मरण करने के लिए, मृत्यु का क्षण। जिस क्षण पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान का स्मरण करने के लिए, वो क्षण में हमें सबसे ज्यादा कठिन होता है भगवान का स्मरण करने में, क्योंकि मृत्यु एक ऐसे दर्ददायक अवस्था है। पुराणों में बताया गया है कि हजारों हजारों बिच्छुओं के काटने के बराबर उतना दर्द होता है, और सारी हमारी इंद्रियां धीरे धीरे से बाहर निकलने लगती हैं, काम करना बंद करती हैं, हम सुन नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते, हम कुछ चाहते हैं, कुछ पीड़ा हो रही है, हम कुछ मांग रहे हैं हमारे रिश्तेदारों से, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। हम कुछ बोलना चाहते कि यहां मुझे खुजली हो रही, यहां कुछ करो, यहां दर्द हो रहा है, यहां मालिश करो, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हमारे रिश्तेदार सोचते हैं प्यास लगा है, पानी देते हैं, लेकिन हमें प्यास नहीं लगा, हमें पैर दर्द कर रहा है। कितनी कठिन परिस्थिति, अलग अलग जगह से इतनी यातनाएं होती हैं, इतने कष्ट होते हैं, इनको सहन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र में प्रार्थना की है, कृष्ण पदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उन्होंने कहा है कि हे भगवान कृष्ण, अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, मेरा मन एक राजहंस के बराबर है, और आपके चरण कमल उन कमल पुष्पों के झुंड के बराबर है, और मैं मेरे राजहंस रूपी मन को आपके चरण कमलों में मैं केंद्रित करना चाहता हूं। एक हंस जो होता है हमेशा ऐसे सुंदर मनोहर वातावरण में रहते हैं जहां की बहुत कमल पुष्प हो इत्यादि, और अपने वो चोंच को वो हमेशा वो कमल पुष्पों में डालते हैं। तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि मेरा मन एक हंस है, राजहंस, और आपके चरण कमल कमल पुष्प हैं, तो मेरा मन इसी समय आपके चरण कमलों में स्थित हो जाए, इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। शारीरिक दृष्टि से मेरा स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से मैं आपका स्मरण अच्छी तरह से कर पाऊंगा। प्राण प्रयाण समय, क्योंकि जब प्राण प्रयाण करने का समय आ जाएगा, मृत्यु का समय आ जाएगा, कफ वात पित्त कंठ अवरोधन, प्राण त्याग के समय कफ वात पित्त ये तीनों चीजें कंठ में एक बार से जम जाएंगी। स्मरण हम कुतस्ते, फिर उस समय मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा। तो मृत्यु के समय हमारा स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है, इतने कष्ट आ जाते हैं हमें, कि उस समय हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि इसी समय जब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इसी समय आप मेरे प्राण को ले लें, ताकि मैं आपका स्मरण करते करते मैं मेरी मृत्यु हो जाए, ताकि मैं आपके पास चले आऊं। कोई भरोसा नहीं है कि जब मृत्यु आएगी मेरी क्या अवस्था होगी, मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वैसे ये घटना हम कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन अगर हमने मृत्यु के समय भगवान का नाम याद करना है तो जीवन भर इसके लिए तैयारी करनी है। जीवन में इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय हम भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाएंगे। एक महिला थी, बूढ़ी महिला, जो कि मृत्यु के शैया पर लेटे हुए थे, और उस समय हमारे एक भक्त थे, संस्था के भक्त, जो कि एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने सोचा कि ये मेरी पेशेंट है, मरीज है, तो न केवल इनके शरीर का देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भक्त हूं और इनके मृत्यु का समय आ गया है, तो इनके मुख से भगवान का नाम निकालना भी मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने उस महिला के कान में जोर से कहा कि हरे कृष्ण बोलो। वो माताजी सुन नहीं सकी तो और जोर से बोला, क्योंकि मृत्यु के समय सारी इंद्रियां बहुत कमजोर होने लगती हैं। हरे कृष्ण बोलो, उसको समझ में आया लेकिन कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर और कहा, हरे कृष्ण बोलो। वो महिला ने कभी भी शायद भक्ति नहीं की होगी, शक्ति ताकत कितनी कम थी शरीर के अंदर, वो थोड़ी सी ताकत से फिर भी वो हरे कृष्ण बोल सकती थी, दो शब्द बोलने थे, हरे कृष्ण। लेकिन उसने ये ठीक समझा कि हरे कृष्ण न बोलकर अपना सर हलाया, मैं नहीं बोलूंगी। उतना ही ताकत अगर दो शब्द बोलने में लगाते हरे कृष्ण तो कितना अच्छा हो जाता, मरते मरते भगवान का नाम लेके चले जाती। लेकिन वो नहीं बोला, हम नहीं लेंगे भगवान का नाम, इतना जिद होता है, क्योंकि अभ्यास नहीं। कोई भक्त हमारे पास बैठे हैं, हमारे मृत्यु के समय हमें भगवान का नाम सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण बोलो, तुरंत हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस वो माता जी ने अभी तक तैयारी नहीं की थी भक्ति में, इसलिए मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले पाए। तो एक बात यह है कि बहुत ही दुखद अवस्था में जब स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है, उस समय भगवान का नाम लेना प्राय असंभव हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, संसार का यह अनुभव है कि जब लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है तब भी वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाता है, उतना उत्साह आ जाता है, इतनी शक्ति, इतना ताकत, सब कुछ, अरे चलो दुनिया का भोग करो, सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए उस समय भी भगवान का नाम लेना कठिन है। रजगुण इतना शरीर में आ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, अरे संसार कहां दुखालय आश्रय, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, कोई शरीर में कष्ट नहीं, शरीर साथ दे रहा है, सब कुछ ठीक है, क्यों भगवान ने बोला है दुखालय अशाश्वतम है, ये दुखालय तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब कोई ठोकर आता है जीवन में तब आदमी हाँ ये दुखालय है तब याद आता है। लेकिन भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी बहुत हमें राहत मिलती है दुख से, तो हमें लगने लगता है कि अरे कहां दुख है, ये चल रहा अच्छा है ना जगह, उसमें क्या तकलीफ है। इसलिए दया करके भगवान फिर से ठोकर मारते हैं हमको, फिर से हम जाग जाते हैं, हाँ ये संसार दुख का है, फिर से भूल जाते हैं। तो यह है अवस्था। इसलिए जिसके जीवन में दुख है हमें समझना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए अगली बार जब हम शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख हैं, ये शिकायत करने के पहले हमें इस बात को याद करना चाहिए कि दुख है हमारे जीवन में तो भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, असीम कृपा बरसा रहे हैं, विशेष हमें कृपा दे रहे हैं। अभी हम में से कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं दुखी नहीं हूं? आप में से कोई है जो बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में दुखी नहीं हूं? किसी का ऐसे जीवन में है नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हरेक के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कोई न कोई दुख, कोई न कोई कष्ट, इस तरह से उस तरह से, आज नहीं तो कल, थोड़े क्षण जाते हैं लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, अचानक कुछ और बीच में आ जाता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषां, एक भी क्षण भगवान हमें आराम से रहने नहीं देते। अभी अभी एक समस्या का समाधान हो गया कि दूसरा समाधान आके खड़ा हो गया, वो उसका समाधान होते गया तीसरा समस्या आ गया। कुछ ना कुछ होते ही रहता है ये संसार में, कभी हमें शांत और आराम बैठने नहीं देता है, और ये भी भगवान की कृपा है। तो इसलिए हमारे जो भी अवस्था है, जो भी परिस्थिति है, उसमें हमें भगवान का नाम लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ये अनुशीलन का मार्ग है, इसको अनुशीलन करते रहना चाहिए, कल्टीवेशन करते रहना चाहिए। इसी बात को यहां पर जो महाराज नाभि के यज्ञ स्थली में उपस्थित जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, वो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, संभव है कि हम लड़खड़ाने, भूख रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने कारण आपके नाम का स्मरण न कर पावे। यहां श्लोक में शब्द का प्रयोग किया गया है स्खलन। स्खलन मतलब ठोकर खाना। बार बार कितनी बार ऐसे होता है, अचानक हम जा रहे हैं सर ठोकर लग गया कहीं पे, हम उठ रहे हैं ऊपर कुछ लग गया, जा रहे हैं हाथ में कुछ लग गया, ठोकर लगता है कभी कभी। और ठोकर लगते समय लोग आजकल अलग अलग चीजें बोलते हैं, हाय हे हो बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ठोकर लगते समय हमें ऐसे कुछ क्यों बोलना चाहिए? हमें भगवान का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? हमें आदत लेनी चाहिए ताकि हम हर अवस्था में भगवान का नाम ले सकें। दूसरा बात फिसलना, हम फिसल रहे हैं अय्या औ बोलने की बजाय हम हरे कृष्ण हरे राम कुछ तो बोल सकते, हे कृष्ण हे राम। तो ऐसे हर क्षण में हमें भगवान का नाम लेने में अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्षुत जब भूख लगी है, ज्यादा भूख से बहुत पीड़ित होते हैं हम, पतन जब गिर जाते हैं कहीं से, या जृंभण जब जम्हाई करते हैं नींद आ जाती है, उस समय क्या स्मरण आता है, कहां अच्छा पलंग मिले सोने के लिए, भगवान का नाम याद नहीं आता। हम जब करने बैठे हैं नींद आती है तो सर भगवान का नाम भी दूर चला जाता है, और हमारे बिस्तर का स्मरण करते हैं, कितना अच्छा है, तकिया है, सब कंबल है, कितना अच्छा लगता है सो जाना वहां पर, तो उस समय भगवान का नाम भूल जाते हैं। दुरवस्थान किसी प्रतिकूल स्थिति में रहने के कारण भी हम भगवान का स्मरण शायद नहीं कर पाए। और फिर ज्वर मरण दशायाम, मरण दशायाम जब मृत्यु का समय होता है, जो ज्वर आता है बुखार आता है बहुत तेज रहता है, और उस समय आदमी के होश ठिकाने नहीं रहते, ठीक से आदमी सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं पड़ता, और उस समय अगर यमदूत दिखाई पड़े जो कि उसे उसकी आत्मा को शरीर से छीनने के लिए आ रहे हैं, तब तो बात ही खत्म। फिर तो कुछ भी नहीं, उसके होश तो वैसे भी ठिकाने नहीं रहते, और जब यमदूत को देखता है तो बात खत्म हो जाती है। फिर आगे व्यक्ति कुछ नहीं सोच सकता है उस डरावनी अवस्था में, उस भयंकर अवस्था में। तो यहां पर पुरोहित यज्ञ स्थल में बोल रहे हैं भगवान से कि ऐसे जीवन में हम अलग 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 परिस्थितियों से गुजर सकते हैं, जिनमें शायद हमें आपका नाम लेना बहुत कठिन हो जाए। इसलिए क्या प्रार्थना करते हैं आगे, अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहते हैं, भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। हाँ, सभी के ऊपर कृपा रखते हैं, जो अभक्त हैं उनके ऊपर भी कृपा रखते हैं, जो यातनाएं अभक्तों को सहन करनी पड़ती हैं वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान का प्रेम है, ताकि वो उनको उनके शरण में लेकर आए। आप हमें अपने पवित्र नाम गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं अंत में ये ब्राह्मण सारे, बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा करें कि आपके पवित्र नाम गुण तथा लीलाओं का स्मरण हम कर सकें। ये असली प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम भगवान के सामने आते हैं तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधा गोकुलानंद, हे गौर निताई, हे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, हम आपसे कोई भौतिक प्रगति के लिए प्रार्थना करने नहीं आए, हमारी पीड़ा को खत्म करने के लिए यहां पर हम नहीं आए, हम केवल यही प्रार्थना आपसे चाहते हैं कि आपके सुंदर नाम, लीला, रूप, गुण, भक्त, धाम इत्यादि का हम सतत स्मरण करने में हम समर्थ हो जाएं। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें, हमारी यही एकमात्र प्रार्थना है, और कोई इच्छा हमारे अंदर नहीं है। इस संसार का कोई भोग नहीं चाहते, कोई प्रगति नहीं चाहते, कोई यश नहीं चाहते हैं, केवल आपका स्मरण चाहते हैं, बस। ये उच्चतम प्रार्थना है, एकमात्र हमारे लिए आवश्यक प्रार्थना है। अगर हमने ये प्रार्थना कर ली, इसमें सारी प्रार्थनाएं आ जाती हैं, और ये सारी प्रार्थनाएं हरे कृष्ण महामंत्र में हैं। जब हम सुबह को हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं या हम कीर्तन करते हैं, तो हम ये प्रार्थना हृदय, ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। नहीं तो यांत्रिक रूप से अगर हम केवल हरे कृष्ण करते रहेंगे तो उतनी भावना नहीं होगी। हरे कृष्ण का नाम लेने में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, श्रवण अच्छा करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करके पूरे ध्यान से मंत्र का श्रवण करना चाहिए। लेकिन इतना काफी नहीं है, ध्यान पूर्वक लेते समय भी भगवान के शरण लेना चाहिए, आश्रय। दो चीजें होती हैं, नाम ग्रहण और नाम आश्रय। नाम ग्रहण मतलब हमें पूरी श्रद्धा है कि हरि नाम हमारा उद्धार कर सकता है, हरि नाम लेने से हमें श्री कृष्ण प्रेम और मनुष्य जीवन की सफलता मिल सकती है, तो ये अच्छा है। तो हम नाम ग्रहण करते हैं, अच्छे ढंग से भी ग्रहण करें, ध्यान पूर्वक भी ग्रहण करें, नींद नहीं आई, बिल्कुल ध्यान से श्रवण किया, बहुत अच्छा है, ऐसे करना ही चाहिए। कम से कम जप के समय झोंक करने के, सोने के अच्छा है। लेकिन इससे श्रेष्ठ है नाम आश्रय। नाम आश्रय मतलब हम पूरी तरह से निस्सहाय भावना से भगवान के नाम को पुकारते हैं, ये समझकर कि भगवान के नाम के अलावा और कोई सहारा और कोई आश्रय हमारे जीवन में नहीं है। इस निस्सहाय भावना के से, इस ऐसे पुकार से भगवान आकर्षित होते हैं। अगर ऐसे हम पुकारेंगे भगवान को तो भगवान तुरंत आएंगे, जैसे कि वो द्रौपदी के पुकार से आए थे। और अगर हमने निस्सहाय भावना से, भक्ति रहित भावना से भी किया लेकिन निस्सहाय भावना से किया, उस समय भी कम से कम हम नरक से बच सकते हैं। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है, जिसमें अजामिल ने अंत में जब यमदूतों को देखा तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा बड़े निस्सहाय ढंग से, क्योंकि मृत्यु के समय हम उस चीज का या उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा आसक्ति है। और छोटे बच्चे के प्रति लोगों की आसक्ति बहुत रहती है, तो नारायण उनका सबसे छोटा पुत्र था अजामिल का, तो मृत्यु के समय उन्होंने नारायण कहकर पुकारा जोर से निस्सहाय भावना से। अभी उनकी भी सुकृति थी कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, जो और कुछ नहीं रखा। जब अजामिल ने नारायण शब्द कहा तो उस समय उन्होंने नारायण का स्मरण नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, अपने पुत्र का स्मरण किया। लेकिन क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, नारायण शब्द का उच्चारण करने से विष्णुदूत तुरंत वहां पर आ गए और विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोका और कहा कि तुम इसकी आत्मा को नहीं ले जा सकते। विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में संवाद हुआ, जिसमें कि विष्णुदूतों ने अच्छी तरह से यमदूतों को समझाया कि ये आदमी कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन उसने मृत्यु के समय विष्णु का नाम पुकारा है। भले उसने ये समझकर नहीं पुकारा कि मैं भगवान को बुला रहा हूं, लेकिन विष्णु का नाम तो पुकारा, इसलिए इसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं रहता है इस व्यक्ति को ले जाने के लिए। तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक का उच्चारण किया, संकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरं विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणम, अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ का नाम ग्रहण करता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करता है, संकेत्यम, संकेत्यम मतलब इनडायरेक्टली, जैसे राज महिषी, इसमें रा म आ जाता है, बीच में ज आता है लेकिन रा और म हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है भगवान का नाम का उच्चारण करना। परिहास्यम, कोई उपहास में करता है, जैसे हमारे भक्त कभी सड़क पे जाते हैं तो कोई लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण ऐसे मजाक उड़ाते हैं भक्तों का, परिहास्य हंसते उपहास में उसने उच्चारण किया। स्तोभम मतलब केवल संगीत के लिए, कोई लोग ऐसे होते हैं जो संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं, भगवान के नाम में रुचि नहीं है लेकिन संगीतमय ढंग से वो नाम लेते हैं तो उनको मजा आता है, तो कोई इस प्रकार से बोलते हैं। हेलनम अवहेलना करके भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरम, अशेष मतलब अनंत, अघ मतलब पाप, हरम मतलब क्षीण हो जाते हैं, तो इन तरीकों से भी अगर कोई भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करे तो अनंत पाप तुरंत एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। यह है भगवान के नाम का उच्चारण करने की शक्ति। और आगे विष्णुदूत बताते हैं, पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिर् इत्यवश्येह पुमानार्हत यातनाः। आह पुमान हरि ही, अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम का उच्चारण करता है, किस समय, पतितः कहीं जा रहा है ऊपर से गिर गया, कभी कभी गिरते हैं, कोई सीढ़ी पे चढ़ा है नीचे गिर जाता है, कहीं सीढ़ी ऊपर और कहीं चढ़ा है गिर जाता है, किसी भी तरह गिरते गिरते उसने भगवान का नाम लिया, स्खलित हो फिसल जाता है, चलते चलते केले का छिलका आ गया बीच में, पैर रख दिया, धड़ाक से फिसल गया। हमारे मंदिर में पहले कितने लोग सीढ़ी पर फिसल जाते थे, फिर सीढ़ी बदलने पड़े। तो बारिश के समय पानी आ जाता है, मंदिर के बाहर जाते जाते कोई फिसल गया, गिर गया, स्खलित हो भग्न, किसी का कोई अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। संदष्ट, संदष्ट मतलब सांप ने या किसी ने, कुत्ते ने, कुछ ने काट दिया है। कभी कभी सुबह सुबह हमारे भक्त जब मंगल आरती के लिए आते हैं तो कुत्ते बहुत पीछे करते हैं ना, तो कुत्ते काटते काटते भी अगर किसी ने सांप काटते काटते भगवान का नाम लिया, तब तक मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई जिससे बहुत शारीरिक कष्ट हुआ, तो ऐसे अवस्था में या आहत मतलब किसी ने तलवार चाकू डंडा लेके हमारे ऊपर आक्रमण किया, चोर आया डाकू आया कुछ भी हुआ, यंत्र अस्त्र शस्त्र से आक्रमण हुआ हमारे ऊपर, और ऐसे अवस्था में किसी ने भगवान का नाम लिया, तो उस समय क्या होता है, न अर्हति यातना, कम से कम यमराज की यातनाओं से या नरक लोक की गति से वो बच जाएगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम लेने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो जब कोई अपघात होता है तो निश्चित रूप से भगवान का नाम लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभ्यास न करते हुए भी कोई सौभाग्य से अपघात के समय भगवान का नाम लेता है, फिर भी उसे यह फायदा होता है। तो यहां जो पुजारी पुरोहितगण यज्ञ स्थली में प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में फिसलते समय, चलते समय, गिरते समय अगर हम आपको भूल गए तो क्या होगा, तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं कि ठीक है, भगवान का नाम लेते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ताकि एक्सीडेंट जब हो रहा है, अपघात हो रहा है, उस समय आप स्वाभाविक तौर से भगवान का नाम आपके मुंह से आ जाएगा। एक भक्त बता रहे थे कि वो एक व्यक्ति के साथ जा रहे थे और वो व्यक्ति योगी था, योग अभ्यास का, पतंजलि का योग अभ्यास करता था, लेकिन केवल योग करना इतना ठीक है, लेकिन वो सोचता था कि भक्ति से श्रेष्ठ ये योग पद्धति है। तो वो गाड़ी चला रहा था और साथ में बैठे ये भक्त ये माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और उस समय अचानक दूसरी गाड़ी सामने से आ गई और उनको जोरदार ब्रेक लगाना पड़ा। तो उस समय जो भक्त बैठा था वो हरे कृष्ण कहा जोर से, अभी एक्सीडेंट होने ही वाला था, बच गया गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो उसने जोर से हरे कृष्ण कहा, लेकिन वो जो ड्राइविंग कर रहा था वो कुछ नहीं कह सका, वो तो केवल बड़े हाथ करके ही बैठ गया। फिर बाद में भक्त ने पूछा कि आपने कौन से आसन में बैठे हैं, जब अभी गाड़ी को सामने से देखा, कौन सा प्राणायाम किया, किस चीज के ऊपर आपने ध्यान किया। कहने का मतलब है कि भक्त ही होता है वही किसी भी अवस्था में, क्योंकि भगवान का नाम लेता है, विकट परिस्थिति में अपघात के समय भी वो भगवान का नाम ही लेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने प्रैक्टिस किए बगैर, अभ्यास किए बगैर भगवान का नाम लिया, तो कितना फायदा होगा उसको, कम से कम नरक लोक से तो बच जाएगा, यमराज की यातनाओं से तो बच जाएगा। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमारा देखभाल करेंगे। कई बार भक्त लोग ये पूछते हैं कि ठीक है हम लोग भगवान का नाम लेते हैं वगैरह, लेकिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कई लोग नींद में ही मर जाते हैं, तो हमने इतना तपस्या किया, कष्ट किया, और हमारी नींद में मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा हमारा। इसका जवाब यह है कि भगवान बड़े कृपालु हैं, इसलिए भक्त का हमेशा देखभाल करते हैं। अगर हमने जागते समय सतत भगवान का नाम का स्मरण किया है, और अगर मृत्यु हमारे नींद के समय आ गई तो भगवान हमें उनके धाम में ले जाएंगे, इसमें कौन सी तकलीफ है। लेकिन जागते समय हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जागते समय हम भोग करें भगवान का नाम नहीं लें और सोचें कि मृत्यु के समय जब अगर नींद के समय मृत्यु आ जाए तो भगवान को हमें ले जाना चाहिए, तब भगवान नहीं ले जाएंगे। जागते समय अगर हम भगवान का नाम ले रहे हों तब भगवान कृपा करके हमें वापस ले जाएंगे। जिस तरह से कभी हर एक कारखाने में हर एक ऑफिस में महीने में जो कर्मचारी होता है वो कितने दिन के लिए काम करता है, नहीं ऑफिस जाता कितने दिन है, 30 के 30 दिन जाता है कि कोई छुट्टी भी मिलती है उसको, 4-5 दिन छुट्टी मिलती है ना कम से कम। 25 दिन काम करता है महीने में, तनख्वाह सैलरी कितने दिन की मिलती है, 30 दिन की मिलती है ना। काम करता है 25 दिन क्योंकि तनख्वाह मिलती है 30 दिन की। क्यों ऐसे, उसे 25 दिन की तनख्वाह क्यों नहीं मिलती। कम से कम वो 25 दिन को कर रहा है, 25 दिन वो नौकरी कर रहा है इसलिए उसको 30 दिन की तनख्वाह मिल जाती है, 5 दिन बोनस उसको मिल जाता है आराम करने के लिए। तो उसी तरह से अगर हम 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, लेकिन बाकी समय हमने पूरा समय भगवान का नाम लिया, भगवान की सेवा की, तो सोते समय फिर हमको कंसेशन मिल जाता है, वो तनख्वाह मिल जाती है उस समय भी। वो बाकी समय जो हमें नाम स्मरण किया, जो भगवान की भक्ति की, उसका फायदा सोते समय भी मिल जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो कि काम कर रहा है 25 दिन करने के बजाय 20 दिन करता है, 5 दिन दंडी, 5 दिन नहीं जाता है दफ्तर में यही कारण बना के, तो फिर उसकी पगार कट जाएगी। तो ठीक उसी तरह से अगर हमने 6-7 घंटे के ज्यादा सोने का प्रयास किया, 10-12 घंटा सोए, या फिर जागते समय हमने भगवान की भक्ति नहीं की या कम किया बहुत, तो उस हद तक हमारा नुकसान होगा। क्योंकि तब अगर हमारे मृत्यु होगी नींद के समय तब फिर क्या होगा वो कहना मुश्किल, फिर वो भगवान के हाथ में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अपने हृदय से सतत नाम स्मरण करता है, सेवा करता है, तो फिर भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे। और अगर मृत्यु किसी भी अवस्था में हो जाए, अपघात के समय, नींद के समय, तो भगवान उसे ऐसे कृपा करेंगे कि मृत्यु के समय वो उनका नाम का स्मरण कर सके। इसलिए भक्त के लिए किसी भी बात की चिंता नहीं है। तो हमें सतत ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रश्न है, जब नारायण का नाम लिया वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, भगवान समझकर नहीं नाम ले रहे थे, तो क्या उससे उनको भगवत प्राप्ति हुई। नहीं, केवल एक नाम लेने से उस तरह भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नरक से मुक्ति हो गई। भगवान की प्राप्ति केवल शुद्ध नाम से होता है। भगवान का नाम 3 स्तरों में किया जा सकता है, लिया जा सकता है। पहला स्थान है अपराध युक्त नाम। अपराध युक्त नाम में व्यक्ति 10 तरह के नाम अपराध करता है। दूसरा स्तर है अपराध मुक्त नाम, अपराध से मुक्त, जब निस्सहाय ढंग से किया जाता है। और तीसरा है शुद्ध नाम। अपराध युक्त नाम से हमें फल नहीं मिलता, अपराध युक्त नाम से थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा कुछ भौतिक फल मिल सकता है, भोग मिल सकता है हमको ये संसार का। कोई भौतिक यश मिला, कोई नाम मिला, कोई ऐश्वर्य मिला, ऐसी सब चीजें अपराध युक्त नाम से मिल सकता है। अपराध मुक्त नाम, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसा अपराध मुक्त नाम अजामिल ने लिया था, क्योंकि अपराध बिना लिया था, निस्सहाय ढंग से उच्चारण किया था, तो वो अपराध मुक्त नाम नामाभास। और अगर भगवत प्राप्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, तो शुद्ध नाम भी चाहिए उसके लिए। तो अजामिल को यमदूतों से मुक्ति मिल गई, नरक से मुक्ति मिल गई, सारे पापों से मुक्ति मिल गई, और उसके बाद में अजामिल